नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दाऊद को जहर दिए जाने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि उसे कराची में जहर दिया गया है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रिपोर्ट के मुताबिक हालत गंभीर होने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि दाऊद को जहर दिए जाने की खबरों की किसी में पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि जिस अस्पताल में दाऊद भर्ती है वहां कड़ी सुरक्षा है। अस्पताल के उस फ्लोर पर दाऊद ही इकलौता मरीज है। शीर्ष अस्पताल अधिकारियों और उसके करीबी परिवार के सदस्यों को ही मंजिल तक पहुँचने की इजाज़त है। पाकिस्तान में दाऊद को जहर देने की खबर के बाद देश में हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्वर डाउन की खबर आ रही है। देश के कई बड़े शहर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी सर्वर डाउन है। इसके अलावा एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी नहीं चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि रात 8 बजे के बाद से इंटरनेट की स्पीड स्लो कर दी गई। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में यह पाया कि 81 करोड़ से अधिक भारतीयों की निजी जानकारी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के डेटा बैंक से लीक हो गई है। करीब 2 महीने पहले ये जानकारी डार्क वेब पर बिक्री के लिए डाल दी गई थी, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने 3 राज्यों से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस से पूछताछ के दौरान संदिग्धों ने दावा किया कि उन्होंने जांच ब्यूरो और कंप्यूटराइज राष्ट्रीय पहचान पत्र और पाकिस्तान के आधार समकक्ष का डेटा भी चुरा लिया है। केंद्रीय एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में डेटा लीक पर स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी सोमवार को वाराणसी और नई दिल्ली के बीच जिस दूसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे वो भगवा रंग की है और इसमें कई नई विशेषताएं हैं। उत्तरी रेलवे ने यह बयान जारी कर जानकारी दी। रेलवे मंत्रालय में एक सूत्र ने कहा, ये भगवा रंग की दूसरी वंदे भारत ट्रेन है जिसका संचालन रेल मंत्रालय देश में शुरू करने जा रहा है। उत्तरी रेलवे ने प्रेस में जारी किए अपने बयान के साथ ही भगवा रंग की ट्रेन की एक तस्वीर भी साझा की है। उत्तरी रेलवे ने कहा, ट्रेन में यात्रा करते वक्त सूचना और मनोरंजन प्रदान करने वाला वाईफाई, GPS आधारित यात्री सूचना प्रणाली, आरामदायक व्यवस्था, बायो वैक्यूम शौचालय, रोशनी की LED व्यवस्था, हर सीट के नीचे चार्जिंग सुविधा और हर सीट पर किताब पढ़ने के लिए रोशनी जैसी बेहतर यात्री सुविधाएं हैं। दिसंबर के महीने में ठंड ने पूरे देश में अपनी दस्तक दे दी है। जम्मू कश्मीर में जब से भारी बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है उसका असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। राजधानी दिल्ली में लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। राजस्थान के माउंट आबू में तो तापमान शून्य से भी नीचे चला गया है और कुछ जगहों पर बारिश के आसार भी जता दिए गए हैं। यानी कि आने वाले दिनों में ठंड से राहत नहीं बल्कि ये प्रकोप और ज़्यादा बढ़ने वाला है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस समय वहाँ पर भारी बर्फबारी हो रही है। पर्यटक तो लगातार घाटी पहुँच रहे हैं लेकिन अब उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद बताए जा रहे हैं। कोंगडोरी इलाके में तो तापमान -4 डिग्री तक पहुंच चुका है। राजस्थान के पर्यटन स्थल माउंट आबू में तो ठंड ने अलग ही रूप ले रखा है। वहां पर तापमान इस समय -1 डिग्री चल रहा है। वहां पर अचानक से मौसम ने करवट बदली है और 3 डिग्री तक टेम्परेचर गिर गया है। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों धारावी पुनर्विकास परियोजना के मुद्दे पर गरमाई हुई है। धारावी पुनर्विकास परियोजना को गौतम अडानी ग्रुप की कंपनी को सौंपने के बाद विपक्षी दल एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विकास विरोधी होने के लिए शिवसेना की आलोचना की। शिंदे ने 2020 में धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए सैकनिल्क टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की सफल बोली को रद्द करने के लिए पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे सरकार के फैसले के पीछे एक मकसद के रूप में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कंपनी के साथ उनका सौदा टूट गया होगा। पश्चिम बंगाल CID ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अमृता सिन्हा के पति को संपत्ति विवाद के एक मामले से जुड़ी याचिका के संबंध में समन जारी किया है। आरोप है कि सिन्हा के पति ने इस मामले में अपने रसूख का इस्तेमाल किया था। एक अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी। प्रताप चंद्र डे को शुक्रवार को यहाँ भवानी भवन में CID मुख्यालय में जांच अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। CID अधिकारी ने PTI भाषा को बताया, हमने उनसे सोमवार को अपना मोबाइल फोन हमारे अधिकारियों के पास जमा करने को भी कहा है। उन्हें 22 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में हाल ही में दायर एक याचिका में आरोप लगाया गया था कि पेशे से वकील डे संपत्ति से संबंधित एक मामले में दबाव डाल रहे हैं और अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए INJANSATTA.com पर नमस्कार।